Hare Krishna. महाभारत में भारत का इतिहास का वर्णन हुआ। महाभारत ऐसे केवल कोई कहानियां नहीं, महाभारत है महान भारत के इतिहास, विशेष रूप से चंद्रवंश का इतिहास। दो क्षत्रिय वंश हैं या दो स्रोत से क्षत्रिय वंश का उत्पत्ति हुआ है, एक है सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। सूर्यदेव से जो वंश हैं वो है सूर्य वंश, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, इमं विवश्वते योगम प्रक्तवान अहम अपयम विवश्वान मनविप्राहो मनो इच्छा को वे अपवित। ये जो वंश जो विवश्वान से शुरू हुआ, विवश्वान के पुत्र है मनु, वैवश्यत मनु, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, मनो इक्ष्वाकु वे अब्रवीत। ऐसे इस कुल में रघु का जन्म हुआ था, जिसलिए इस वंश का और एक नाम है रघुवंश। और इस कुल में, इस वंश में श्री रामचंद्र का आविर्भाव हुआ था, जिसलिए ये रामचंद्र को रघुवीर कहा जाता है या राघव कहा जाता है। रघु का नंदन, रघु का वंशज, राम राघव, राम राघव, राम राघव लक्ष्मण। जस्ट वंडरिंग, some devotees I can see do not understand Hindi. Do you understand Hindi? Little bit. I see. Wait, when did you come here?
Today.
Today. Oh, you are properly situated. If you want, they are translating. It's okay. So, baki sab prabhavati Hindi samajhti ho? गुजराती और हिंदी तुम बोलते भी हो? बहुत अच्छा। और सब ठीक है? हिंदी यह तो अनुवाद हो रहा है। तो महाभारत, महाभारत में ऐसे भारत के राजाओं का वर्णन जो है, अच्छा महाभारत है चंद्र वंश का वर्णन, चंद्रदेव सोमदेव से इस वंश का उत्पत्ति हुआ था। और इस वंश में बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर राजाओं ने जन्म लिए थे। जैसे एक राजा था शकुंतला, दुष्यंत। दुष्यंत का विवाह हुआ था शकुंतला से और उनका पुत्र हुआ था एक भरत नाम के, और भारत के नाम के अनुसार इस खंड का, इस भूखंड का नाम हुआ है भारतवर्ष। तो ऐसे ये भारत का, भारत देश या भारत खंड या भारतवर्ष का ऐसे उत्पत्ति हुआ था। तो इस वंश में शांतनु नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे। शांतनु का जब विवाह हुआ था गंगा से, गंगा के साथ महाभारत जब हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं महाभारत ये जो कहा, जो वर्णन है, इस वर्णन से एक विषय बहुत सुंदर रूप से स्थापित होता है, या एक विषय का जानकारी बहुत सुंदर रूप से हो जाता है कि जो कुछ होता है उसके पीछे कोई कारण है। ऐसे अचानक आकस्मिक कोई कुछ नहीं होता। जैसे मैं बोला था शांतनु के साथ गंगा का विवाह हुआ था, तो इसका पीछे एक वर्णन तब याद आता है जिसका वर्णन महाभारत में हुआ है। शांतनु अपना पिछले जन्म में एक बहुत धार्मिक पुण्यवान राजा थे, जिनका पुण्य के फल के कारण उनको ब्रह्मलोक में उनका स्थान मिला था। पुण्य कर्म के प्रभाव से क्या होता है, पुण्य कर्म के प्रभाव से हम ऊपर जाते हैं और पाप के कारण हम नीचे गिरते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सप्तस्था और मध्ये तिष्ठति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसः। जो तमोगुण में जो कार्य होता है, पाप कार्य जो होता है, उसके कारण हम नीचे गिर जाते हैं। जैसे पशु जन्म मिलता है या पेड़ पौधे का जन्म मिलता है, ये पाप के फल के स्वरूप ये होता है, और पुण्य के कारण हम ऊपर जाते हैं। ऊपर का मतलब ऊपर और ये पृथ्वी के भूमंडल के ऊपर और एक छह लोक हैं, एक के ऊपर और एक, वो लोक हैं भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, ज्ञान लोक, तप लोक, और सबसे ऊपर है ब्रह्मांड के सबसे ऊपर स्थान है सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी विराज करते हैं, ब्रह्मा जी के स्थान है ये सत्यलोक, और वहां ब्रह्मा जी के अकेला रहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी अपने अनुचरों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, जितने बड़े आदमी होते हैं तो उनका पार्षद भी उतना ही ज्यादा होता है। छोटे मोटे आदमी अकेला रहते हैं, या छोटे मोटे आदमी का जो सराउंडिंग है वो छोटा है होता है ना, और जो बड़े आदमी होते हैं तो उसका क्षेत्र विशाल होता है, जितने बड़े होते हैं उतना विशाल उसका क्षेत्र होता है। तो ब्रह्मा जी वहां अकेला नहीं रहते, वहां ब्रह्मा जी के पार्षदों ने ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, और जो बहुत पुण्य काम करते हैं उनको ब्रह्मलोक, ये सत्यलोक में उनका गति होता है या स्थिति होता है। तो एक दिन ब्रह्मा जी के वहां गंगा आई थी, ब्रह्मा जी के का पूजा के लिए गंगा स्वयं पानी लेके आई थी। तो उस समय ये जो राजा थे उन्होंने काम के दृष्टि से गंगा जी की ओर देखा, तो ब्रह्मा जी ये अनुभव किया, ब्रह्मा जी का पता चल गया। तो तब ब्रह्मा जी तत्क्षणात उनको बोला कि तुम सत्यलोक में रहने का लायक नहीं, क्योंकि वहां काम भाव नहीं। तो जहां ये काम भाव हैं, मर्त्यलोक में तुम वापस चले जाओ। तो ब्रह्मा जी के ये कहने से उनका अधगति हुआ, उन्हें सत्यलोक से गिर गए ये मर्त्यलोक में। यहां मनुष्य योनि प्राप्त हुए थे, और वो कौन थे? वो थे शांतनु। और चूंकि उन्होंने गंगा जी के प्रति काम भाव लेकर दर्शन किए थे, तो उनका जो मनकामना था वो भी पूर्ण होने वाला था। तो इस कारण ब्रह्मा ये प्रकृति के नियम के अनुसार, चूंकि उनका पुण्य था, पुण्य कर्म रहने से ऐसा होता है, जो चाहता है वो मिल जाता है। ऐसा होता ना, कोई आदमी है जो चाहता है वो इसको वही मिल जाता है, और ऐसे कोई आदमी है जो वो कितना कोशिश करने से भी कुछ भी उसको नहीं मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें हम समझते हैं और हमें पता चलता है कि जिसके पास पुण्य है उसको उसके लिए बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, और जिसके पास पुण्य नहीं है वो बहुत कोशिश करने से भी उसको कुछ नहीं मिलता है। जैसे आप एक विचार कीजिए, जब जेब में जब पैसा रहता है तो क्या होता है? हम जो कुछ चाहते हैं हम खरीद सकते हैं, मोल सकते हैं, और जब पैसा नहीं रहता है तो हम प्राप्त नहीं होते, पा नहीं सकते। तो पुण्य ऐसे ही, रुपए है स्थूल अर्थ, और पुण्य है सूक्ष्म। पुण्य रहने से रुपए का जरूरत नहीं होता है, रुपए ऐसे ही आ जाता है। हाँ, कैसे? जैसे जो पुण्यवान है उसको बहुत अमीर के घर में उसका जन्म होता है, होने जन्म के कारण उसके यहां वो करोड़पति बन जाता है, खुद करोड़ रुपए बनाने की जरूरत नहीं होता उसको। तो ऐसा ही पुण्य का प्रभाव है, तो पुण्य के फल से जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। तो चूंकि उन्होंने गंगा के और ऐसी दृष्टि से देखे थे, तो इसकी कारण गंगा के साथ उनका विवाह हुआ। ऐसा इसका भी सूचना ऐसे हुआ था कि एक दिन शांतनु ने मृगया कर रहे थे, शिकार कर रहे थे वन में, जंगल में। तो शिकार करते हुए उन्होंने गंगा के तट पर आकर देखा, एक बहुत सुंदरी एक रमणी। तो देखते ही उन्होंने उनके प्रति आकृष्ट हो गए, और उनके जाके पूछा, आप कौन हैं? आप क्या मानवी हैं या देवी हैं? तो मैं आपको आपका पानी ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपको विवाह करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के राजा हूँ, मेरा नाम है शांतनु, इस वंश में मेरा जन्म हुआ। तो वो स्त्री कौन थी? वो थी गंगा। उन्होंने बताया, हाँ, आपसे आपका मनकामना के अनुसार मैं भी आपको शादी करने के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु एक शर्त ये है कि मैं अगर कुछ मेरे किसी भी काम में आप रुकावट नहीं डालेंगे, और आप हमें प्रश्न भी नहीं करेंगे कि क्यों मैं कोई काम कार्य कर रहा हूं। तो शांतनु ने मान लिया, बोला ठीक है, और इस शर्त में गंगा उनका पत्नी के रूप में पत्नी का पत्नी बन गई थी। इसके भी पीछे और एक मैं तो कहानी बोलने वाला था, ये तो कहानी नहीं है, और एक इतिवृत्त है। इसके भी पीछे और एक इतिहास है। वो इतिहास क्या? एक दिन आठ वसु हैं स्वर्ग का देवता। ये एक स्वर्ग का देवता में भिन्न भिन्न कोटि के देवता होते हैं, जैसे द्वादश आदित्य हैं, एकादश रुद्र हैं, ऐसे ही अष्ट वसु हैं। तो वसुओं ने एक दिन गगन मार्ग में, आकाश मार्ग में पृथ्वी के ऊपर से जा रहे थे, तब ऊपर से उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सुरभि के कन्या, सुरभि का पुत्री नंदिनी को देखा। एक गाय, इतना सुंदर, देखते ही उनका मन उनके प्रति आकृष्ट हो गया। और उनमें से एक वसु का पत्नी ने बोला, ये गाय हमको चाहिए, मेरा एक सखी को मैं तो इसको एक गाय उपहार दूंगा। तो सब बताया, देखो ये गाय तो वशिष्ठ का गाय नंदिनी है, तो इसको लेना ठीक नहीं होगा। पर उन्होंने परसुएट करने लगे। परसुएट का हिंदी क्या है?
उकसाने लगे।
तो उन्होंने उकसाने लगे। तब उन्होंने ये तय किया कि गाय चुरा कर ले, और गाय को हरण करके ले गए नंदिनी। उस समय वशिष्ठ अपना आश्रम में नहीं थे। जब वापस आया तो देखा नंदिनी नहीं है। तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन किया क्या हुआ था। तो देखा कि आठ वसु ने नंदिनी को चुरा कर ले गए। तब वशिष्ठों ने उनको साप दिया कि तुम स्वर्गलोक में रहने का लायक नहीं। ऐसा वृत्ति, ऐसे मनोभाव देवताओं को नहीं होने चाहिए, इसलिए तुम मनुष्य योनि प्राप्त हो, मर्त्यलोक पर। तब उन्होंने जब पता चला कि ऐसे सांप मिला है, तो उन्होंने वशिष्ठ के पास आकर बहुत विनती किया कि कृपा करके ये सांप को आप प्रत्याहार कर ली। तो वशिष्ठ ने बोला, देखो मेरा मुंह से जब वाणी निकलता है तो वो तो होने वाला ही है। जब सांप दिया है तो तुमको इसका फल भोगना ही होगा, परंतु अगर गंगा माइया तुम्हारे माता बनने को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जन्म के पश्चात ही तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। परंतु जो ये गाय चूरी किया था, उसको बहुत साल के लिए रहना पड़ेगा पृथ्वी में। तब उन्होंने जाकर गंगा के पास विनती किया कि ऐसे सांप मिला, सब कुछ बताया। तो गंगा बोला, ठीक है, तो मैं मर्त्यलोक में जाऊंगा तुम्हारे उद्धार के लिए। तो इस कारण गंगा ने आकर शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। तो देखिए, ऐसे हमें क्या पता लगता है, चलता है कि जो कुछ होता है उसके पीछे कोई और कारण है। तो गंगा ने तब शांतनु के साथ शादी के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होते ही गंगा वो पुत्र को लेकर नदी में जाकर डाल दिया। हस्तिनापुर तो गंगा के तट पर है, यमुना के तट पर। तो तो शांतनु को भली भांति पता था कि वो कुछ भी किसी प्रकार से उसके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे और पूछेंगे भी नहीं क्यों भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे स्वीकार कर लिया शांतनु ने। देखिए कितना कष्ट हुआ होगा, पिता के आंखों के सामने माँ अपना पुत्र को ऐसे मार डाला, भौतिक दृष्टिकोण से ये कितना निष्ठुर कार्य है। और एक चीज, एक विषय भी हम ये समझते हैं महाभारत के माध्यम कि इस भौतिक जगत में भोग नहीं है। इस भौतिक जगत में चाहे हम कोई भी हो, इस भौतिक जगत में हमको केवल कष्ट ही प्राप्त होता है, विशेष रूप से जब हम रजोगुण के द्वारा प्रभावित रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं, परंतु भोग के अलावा हमें क्या मिल रहा है, भोग की जगह क्या मिलता है, कष्ट ही केवल मिलता है। देखिए शांतनु ने गंगा को शादी किया था, सोचे जैसे कोई पुरुष चाहते शादी करते हैं, क्यों करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रार्थ क्रियते भाग्य। पति और पत्नी चाहते हैं कि आपका संतान हो, और ये संतान के लिए ही उन्होंने कितना कष्ट स्वीकार करते हैं। परंतु देखिए क्या हुआ, संतान होने के पश्चात ही माता ने अपना पुत्र को हत्या कर दिया। शांतनु ने मान लिया, ऐसे एक के बाद एक सात पुत्र का जन्म हुआ, जन्म के पश्चात ही सबको गंगा में डुबा दिया। अब तक संतान का जन्म के बाद जब गंगा उसको लेके नदी में जा रही थी, तब शांतनु ने उसको रोका, बोला माँ होकर कैसे तुम ऐसे निष्ठुर कार्य कर सकते, क्यों तुम ऐसे कर रहे, इस पुत्र को मत मारो, इस पुत्र को रहने दो। गंगा बोला ठीक है, आप जब चाहते हैं तो इस पुत्र को हम नहीं मारेंगे, ये रहेंगे, पर चूंकि आपका शर्त विस्मित होकर मेरा काम में रुकावट डाला और मेरे काम के लिए प्रश्न किए, तो इसलिए मैं अब आपको छोड़कर चला जाऊँगा। और ये बच्चा, इसको मेरा स्नेह का प्रयोजन है, तो इसलिए इसको मैं लेकर जा रहा हूँ, पर कुछ समय के बाद वो जब बड़ा हो जाएगा तब तो आपके पास भेज दूंगा। ये कहकर गंगा ने उस पुत्र को लेकर चले गए स्वर्ग। और ये पुत्र कौन है, भीष्म देव। और इसके पश्चात देखिए भीष्म का क्या हुआ, सब पहले सात वसु का मुक्ति हो गया अमृत जन्म के बाद ही, परंतु जो अष्टम वसु जो थे, जो ये गाय को नंदिनी को चुराया था, उसको वशिष्ठ मुनि का अभिशाप क्या था, बहुत दिन के लिए तुमको पृथ्वी पर रहना होगा। तो भीष्मदेव 16 साल की उम्र में गंगा ने उसको वापस लौटा दिया भीष्मदेव शांतनु के पास, और शांतनु अपना पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुआ, और दोनों ने हर समय एक ही साथ रहते थे। पर एक दिन शांतनु मृगया करने को वन में जब गए थे, शांतनु को ये मृगया के बहुत फॉन्ड थे। ओके, बहुत अच्छा, बहुत चाहते थे, बहुत आसक्त थे, मृगया के प्रति आसक्त थे। तो ऐसे तो एक दिन जब वो मृगया कर रहे थे तो उनको ये बहुत सुंदर खुशबू उनको ध्यान में आई, और तो ये खुशबू को ये अनुसरण करते हुए उन्होंने गंगा में आकर देखा कि एक दिव्य रमणी, बहुत सुंदर एक लड़की नाव से पारापार कर रहे हैं जाती है। तो उनको जब उन्होंने पूछा आप कौन हैं, तो बताया मैं धीवर राज का कन्या हूं, और तब उन्होंने उनको अपना मनोभाव व्यक्त करके बताया कि मैं आपको चाहता हूँ। तो बोला मैं मेरा पिता का संपत्ति हूँ, आप अगर हमको चाहते हैं तो मेरे पिताजी के पास जाकर पूछिए, उनको अनुमति लेकर केवल आप हमको प्राप्त हो सकते हैं। तब शांतनु धीवरराज के पास गए तो उनको बताया वो कौन थे और वो क्या चाहते थे। तब धीवरराज ने उनको बोला ये तो मेरा बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे एक महान राजा मेरा कन्या का पानी ग्रहण करना चाहते हैं। कन्या को ये पानी ग्रहण, ये हिंदी शब्द में प्रयोग होता है, पानी का मतलब हाथ, उसको ग्रहण, पति पत्नी का पानी को हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ से ग्रहण करते हैं। तब ये बल्कि मैं मेरा एक वासना है कि मेरा बेटी का जो पुत्र होगा वो सिंहासन का अधिकारी बनेगा। तब शांतनु ने बताया ये तो मुश्किल है क्योंकि मेरा तो एक पुत्र है और उसके राज सिंहासन का अधिकार तो उसका ही है। तब धीवरराज ने बताया कि ठीक है, तब मेरा बेटी को नहीं मिलेगा। तो शांतनु ने बहुत विषण होकर अपना प्रासाद में वापस लौट आए। देवव्रत भीष्म तब तक नहीं बन हुआ उनका नाम, उनका नाम था देवव्रत। देवव्रत ने जब देखा कि इनका पिता इतना विषण है, विमर्श है, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप कैसे इतना ऐसा आपको विषण मालूम होता है। शांतनु ने बोला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, पर भीष्म ने देवव्रतों को ऐसे मालूम हुआ जरूर कुछ हुआ होगा, क्योंकि पिताजी अपना स्वाभाविक प्रसन्न रूप में आज नहीं है। तो उनके जो अनुचर थे, सारथी थे, उनको पूछा तो बताया क्या हुआ। तो भीष्म बोला ठीक है, देवव्रत बोला कि ठीक है चलो हमको लेके चलो वहां पर। तो सारथी ले गया भीष्म को। भीष्म ने धीवरराज को पूछा कि आपके कन्या के प्रति मेरा पिताजी ने आसक्त हुए हैं, उनको बहुत चाहते हैं, तो आपके लड़की को उनको समर्पण कीजिए। तो वह देखो उनको समर्पण करने के लिए तो मैं तैयार ही था, परंतु मैं जब एक शर्त मेरा शर्त बताया तो उन्होंने मैं क्या करूँ। भीष्म ने पूछा क्या हुआ, बोला कि मेरा ये शर्त था कि मेरा बेटी का लड़का राज सिंहासन का अधिकारी बने। तो भीष्म बोला ठीक है, ये सिंहासन का अधिकार मैं त्याग कर रहा हूं। तब वो बताया ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, पर आप तो सिंहासन का अधिकार त्याग कर दिया, पर आपका लड़का वो तो सिंहासन दावी करेंगे, तब वापस में संघर्ष होगा भाई भाई में, भाई भाई के बीच। तब भीष्म ने बोला ठीक है, तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो ये एक भयंकर प्रतिज्ञा था, क्योंकि क्षत्रिय के लिए जो रजोगुण के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से जो भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं, ये उनका वृत्ति है। क्षत्रिय का वृत्ति है भोग, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव, क्षत्रिय कौन है जो रजोगुण के द्वारा प्रभावित रहते हैं। इसलिए क्षत्रिय रजोगुण के प्रभाव वाले क्षत्रियों के लिए भोग को ऐसे त्याग करना बहुत कठिन है, कठिन होता है। तो देवव्रत जब ऐसे प्रतिज्ञा किया, तब स्वर्गलोक से देवताओं ने भी चमत्कार हो गए और उन्होंने बोलने लगा, भीष्म भीष्म कैसे भयंकर एक प्रतिज्ञा इन्होंने की है, ये भयंकर भीषम, इसके कारण उनका नाम हुआ भीष्म। और उन्होंने स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि करने लगा। उसके पश्चात देवव्रत पद्मावती को लेकर सत्यवत पद्मगंधा, इनका दो नाम थी, एक था पद्मगंधा और ये नाम था सत्यवती, सत्यवती को लेकर शांतनु के पास आए। तो शांतनु जब सुना भीष्म ऐसा प्रतिज्ञा किया, तो शांतनु ने उनको बर दिया कि जब तक तुम खुद इच्छा ना करोगे तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का बर दिया था। तो देखिए वशिष्ठ का साप यहां बर बन गया है। वशिष्ठ ने बोला बहुत साल के लिए तुमको पृथ्वी पर रहना होगा, और यहां बहुत साल के रहने का प्रस्तुति हो गए हैं, पिता ने बढ़ दिया तुमको, अगर तुम इच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति होता है, एक स्थान के अभिशाप और एक स्थान के वरदान होता है, और एक स्थान के वरदान दूसरे स्थान के अभिशाप होता है। और भी ये विचार करने का विषय है। देखिए धीवर राज ने चाहते थे कि उनका लड़की सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, पर उनका दो पुत्र हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर, पर दोनों पुत्र का ही अकाल मृत्यु हो गया। चित्रांगद के साथ, चित्रांगद नाम के एक गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में चित्रांगद का मृत्यु हो गया, और विचित्र वीर्य का क्षय रोग, यक्षा रोग में उसका मृत्यु हो गया। कितना चाहता था कि ये उसका पोता राजा बनेगा, पर मृत्यु होने के कारण राज सिंहासन खाली हो गया। और भीष्म ने राज सिंहासन का से उनका अधिकार त्याग दिए थे, तो भीष्म ने और राज सिंहासन लेने का लायक नहीं थे। तो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया कि राज सिंह प्रतिज्ञा करवाया उनसे कि वो राज सिंहासन के अपना अधिकार इनकार कर देंगे। तो ऐसा अब स्थिति हुआ कि सिंहासन में कोई बैठने वाला नहीं था। सत्यवती ने बताया, देखो एक ये उसका जो पत्नी है, दो पत्नी अंबिका और अंबालिका, उनको कोई संतान नहीं था। तो शास्त्र विधि के अनुसार अगर वंश रक्षा के लिए देवर के द्वारा पत्र उत्पादन का विधि है जो कली युग में जिसको जिसको निषेध हो गया है। कली युग में चार विषय पांच विषय निषेध है, वो है अश्वमेधम गवालब्धम संन्यास फलपौत्रिकम देवरेन सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जयेत। ये पांच कार्य कलियुग में वर्जन हुआ है, वर्जित हुआ है, निषेध निषिद्ध है। एक है अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास ग्रहण। तो आपको पूछ सकते महाराज तो आप कैसे ये जो संन्यास है वो है एक दंड संन्यास और वैष्णव संन्यास का निषेध नहीं है, निर्विशेषवाद संन्यास का निषेध, वैष्णव संन्यास का निषेध, त्रिदंड संन्यास जो हमारा जो संन्यास है वैष्णव संन्यास है, त्रिदंड संन्यास है, उसका निषेध नहीं है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह संन्यास आश्रम का प्रचलन किए हैं और श्रील प्रभुपाद इसको अनुसरण किए। तो ये संन्यास फलपौत्रिकम, फलपौत्रिकम श्राद्ध में पितृ पुरुष के लिए जो श्राद्ध होता है वो श्राद्ध में फल मतलब मांस अर्पण करना। देखिए हम एक ये होता है ना, हम बोलते हैं पुलाव, है ना, पुलाव बोलते हैं खाना, बल्कि पुलाव खाना नहीं चाहिए। पुलाव का और एक नाम है फल मतलब मांस मिश्रित अन्न, फलान्य, पलान्न से ये पुलाव शब्द का प्रचलन। तो हम तो मांस मिश्रित अन्न तो नहीं खाते हैं, खाना नहीं चाहिए, तो मेनू में पुलाव नहीं रखना है। इसलिए मेरा याद आया कि आज हम रेस्टोरेंट का मेनू बना रहा था तो मालिनी ने बहुत लगाया पुलाव, इसका पुलाव उसका पुलाव, तो तभी मेरा ये हुआ था कि ये पुलाव शब्द जो है ये ठीक नहीं है। तो संन्यास फल पैतृकम, फल मतलब मांस पितृ श्राद्ध में निवेदन, और देवरेन सुतोत्पत्ति देवर के द्वारा भाई के पत्नी के गर्भ में, जब अगर भाई का मृत्यु हुआ और वंश में कोई नहीं है तो वंश रक्षा करने के लिए देवर के द्वारा सुतोत्पत्ति मतलब पति का भाई के द्वारा संतान उत्पत्ति, ये दूसरे युग में इस विधि था पर कली युग में वो निषिद्ध हुआ है। तो द्वापर युग में ये विधि का प्रचलन था, तो इसलिए सत्यवती ने भीष्म को बताया कि तुम ये अंबिका और अंबालिका का गर्भ में वंश रक्षा करने के लिए पुत्र उत्पादन करो। विश्व बोला, भीष्म ने बोला मैं तो प्रतिज्ञा किया आजीवन ब्रह्मचर्य का, तो ये तो मेरे लिए संभव नहीं हो। तब सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया जो उनका ही एक पुत्र था, पराशर मुनि के द्वारा उनके गर्भ में व्यासदेव का जन्म हुआ था। तब व्यासदेव के माध्यम अंबिका और अंबालिका का गर्भ में धृतराष्ट्र पांडु का जन्म हुआ और एक दासी का गर्भ में विदुर का जन्म, उन्हीं का एक दासी के गर्भ में। तो ऐसे देखिए ये हैं विधि का विधान, हम एक चाहते हैं और विधि भाग्य का लिखन और दूसरा तरीका का। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इस भौतिक जगत को भोग करने के लिए कुछ परिकल्पना, कोई योजना नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को शरण लेके भगवान की इच्छा के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। तो ये इसका ही ये ही शिक्षा महाभारत में इतनी सुंदर रूप से दिया गया है। असल में हमको अंत में क्या करना चाहिए, भगवान को शरण लेना ही जीवन का उद्देश्य। अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है, सब कुछ रहते हुए भी हमको कुछ नहीं रहता है। भोग करने का इतना चेष्टा करने से भी हमें भोग नहीं मिलता है। भोग की जगह क्या मिलता है, भोग की जगह दुर्भोग मिलता है। और तो ये ऐसे महाभारत के माध्यम इसका ऐसे शिक्षा हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड में एक सेमिनार दे रहा हूँ जुलाई महीना में। उस सेमिनार का विषय मैं स्थिर किया कि फैसिनेटिंग स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का हिंदी क्या होता
है, मोहित करने वाली होती,
चमक नहीं तो चमत्कार, महाभारत के चमत्कार कहानियां। तो इसलिए आज मैं सोचा कि आपसे भी थोड़ा सुनाऊं। ये प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं देखा ये भक्त लोग कहानियां सुनने सुनना बहुत चाहते हैं, और कहानियां ऐसी कहानियां जिसकी माध्यम हमें बहुत गहरा और गंभीर शिक्षा में मिलता है, वो कहानियां तो बहुत जरूर ही हमें विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा गो प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी को, कृष्णार्जुन?
एट दैट टाइम द होल वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय सिंगल रूलर, सो आई गेस वाज शंतनु एट दैट टाइम, सो ही डिडंट रियली हैव टू आर्ग्यू और मीट द कंडीशंस ऑफ दैट फिशरमैन किंग, ही कुड हैव जस्ट फॉट यूज हिज पावर एंड लाइक अ क्षत्रिय ही कुड हैव टेकन दैट, बट व्हाई डिड ही हैव टू एक्सेप्ट, बिकॉज़ ही नॉट अंडर हिम।
या बट he didn't want to get into a disagreement with his father-in-law. It's depends upon the individual. You know, yes, a king can forcibly take a girl if he wants, but the girl has to be willing. That is the condition. Like for example, when Bhishma took Amba, Ambika and Ambalika for Vichitravirya, then Amba told him that she already had given her heart to Shalya. Then Bhishma said, okay, then you can. People those days used to be very noble, and they would forcibly take a girl away in a swayamvara. Not they won't go to somebody's house. That day. And it would be done with mutual agreement. Not. Otherwise, that is called Rakshas Vivaha. The Rakshas do things like that. Even if the girl is not willing, they forcibly take the girl away. That is also one kind of marriage. But that's for the Rakshas. So here Satyavati told that you have to take my father's permission. So that's why he went to the father. But when the father refused to give her, then he accepted that. Devarena, devare dara, shuto putro utpatti. Mane kono bidhava jodi santan na thake, tahole purbe prochalon chilo je devarer dara tar putro tar gorbhe putro utpadan kora. Eta to
kali
jug nishiddho.
Nishiddho.
Ar eta kono? Kon ta? এটা তো কলিযুগ না, এটা তো দ্বাপর।
পাঁচটা নিষেধ আছে, চারটে বললেন, একটা অসময়ে, একটা গমে, একটা দেবর দ্বারা,
আরেকটা হচ্ছে সাধ্যে মাংস
রাধে মাংস, চারটে হলো, আর
একটা আরেকটা দেবরের সূত্রোৎপত্তি, চার হলো,
চারটে
সন্ন্যাস।
আপনি
জুলাই মানে জুলাই মে সুইজারল্যান্ড মে হু আপনি ইয়া তো ভাগানা চাহতে অশ্বমেধম গবালব্ধম অশ্বমেধ যোগ্য গোমেধ বাঙালিরা দেয়, ওরা তো বিশ্ব শাস্ত্রবিধি ধার কাছে যায় না। এমনিতে কলিযুগে যদি নিয়ম পালন করতে চাও তাহলে কখনো মাংস দিও না, ঠিক আছে? শুধু সাধ্যেই না, কখনোই না। Just a moment, yeah.
Maharaj, we see that Bhishma Pitama, he was a great devotee of the Lord also. As a matter of fact, in my humble understanding, he was one of the rasas, in Virya Rasa, when he was fighting with the Lord. So how is it that this seed of devotion was planted in his heart, and what were the exchanges of Bhishma Pitama with the Lord, in devotional? And did he go back home, back to Godhead?
Yeah, the Lord was standing in front of him before he left his body. So obviously, the Lord himself came. So naturally, he went back to Godhead. Bhishmadev, we have to understand that he was a demigod in his previous life. And he was trained up by Parashuram and Brihaspati. So obviously when he was on the heavenly planet, he had a good dose of Krishna consciousness from Brihaspati. And so Bhishmadev was a great devotee of Krishna. But his mellow was this, as you said, Viraras. Viraras is a secondary mellow, it's not a prime principle. His mellow was actually Shantaras. He was not, so therefore he accepted Krishna but did not develop that loving relationship that which begins from Dasyava. So that's the thing, so that's why it says that Bhishmadev was a Gyanamishra Bhakt. He was a Gyanamishra. And Bhishmadev, we see, like, he was always considering morality, right and wrong. That is the reason why he didn't go against the Kauravas when Draupadi was being insulted. Because he saw that he had been, it's a duty of a subject to abide by the king. A subject cannot stand up against the king, even if the king is wrong. So Duryodhan was the king and he was his subject. Therefore he didn't stand up against him. But Vidur was not like that. Vidur's point was, get rid of this world, kill me. You know? When Duryodhan was born, Vidur told Dhritarashtra, get rid of this child, kill him. Otherwise you destroy the family. And even when Draupadi was insulted, he said the same thing. When the battle of Kurukshetra was said, then he said, get rid of this boy. He'll destroy the whole family. He's evil personified. So that was Vidu's stand. But Bhishma, he was so much caught up with the rules and regulations that devotion to Krishna became secondary. Yes, Chloe? What's your question?
You told that there are three types of sannyasi.
Two types of sannyasi.
Can
you explain them? One is the impersonal sannyasi, those who want to achieve liberation through sannyasi. And then there is Vaishnava sannyasi or Tridandi sannyasi, personal devotee sannyasi. Their business is not liberation but to serve Krishna. So these are the two types of sannyasi. Yes, Tulika. चमत्कार का ये प्रयोग होता है जहाँ विस्मय है, जिस कार्य से विस्मय होता है, और अद्भुत जो ऐसे स्वाभाविक रूप से जो नहीं होता है वो है अद्भुत। जैसे अगर भूत देखते हैं तो अद्भुत लगता है। अब चमत्कार नहीं होते, परंतु जिस घटना के द्वारा आनंद के साथ विस्मय का उत्पत्ति होता है वो है चमत्कार। यस
In this narration, we can see how the apparent curse became a benediction to Bhishma Deva, because he could serve and participate in the Lord's pastime. So similarly, we can see that it is said the Lord's mercy flows from to the lowest region. So the most fallen divinities of Kali Yuga are given the opportunity to enter into Krishna's pastimes. So that means those who were pious, those who were not fallen, that became a disadvantage in one sense. So how could it is possible that being pious has become a disadvantage in this context?
Kaun kiska mobile phone?
Ye
darwaza band kar. What's your question?
It was that the being most fallen in Kali Yuga.
Yeah, okay. Yeah. So what's your question?
So being pious, those who would not take birth in Kali Yuga because they were pious divinities, they didn't get the advantage that Kali Yuga people had. So in a sense, we can say that being pious has become a disadvantage.
Yes.
So how is it that being pious has become a disadvantage?
You see, a mother has four children. The first one is grown up, he can take care of himself. Mother doesn't worry so much about it. The second one is also somewhat like that. The third one also. But the youngest one, he is not only the smallest, but he is also sick. So when the youngest one cries, what does the mother do? She comes and picks up the child on her lap. So similarly, the Lord has become most merciful to the weakest, the youngest, and the most fallen one, and the sickest of His children. Yes, His mercy has come down. Yes, Raghav Pandit.
बाकी चीजें तो फॉलो हो रही है
जैसे
संन्यास में जैसे बहुत से हम सन्यासी देखते हैं जो निर्विशेषवादी है तो वो तो देख तो रहे हैं बोलते हैं हम सन्यासी हैं
वो शास्त्र कभी पढ़ा है ना तो शास्त्र पढ़ते हैं ना तो शास्त्र समझते हैं और ना तो किसी समझने वाले व्यक्ति के साथ शरण लेते हैं ये कलियुग का सन्यासी है कलियुग का ये आप देखेंगे हरिद्वार ऋषिकेश जाइए देखेंगे मैं बहुत देखेंगे गंजा पीते हैं चरस पीते हैं उल्टा सीधा काम करते हैं क्योंकि देखिए अगर उत्कृष्ट स्वाद अगर नहीं मिलता है तो निकृष्ट स्वाद त्याग नहीं कर सकेंगे हैं भगवान गीता में कह रहे हैं परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते हमको जब कुछ अधिक स्वाद जब मिलता है तो निकृष्ट जो स्वाद है उसको हम त्याग कर सकते जब तक नहीं मिलता है तो उसको स्वाद नहीं त्याग कर सकेंगे ये संभव नहीं है कितना भी हम कोशिश करें जब तक वो नहीं होगा जैसे जब 10 रुपया मिलने का संभावना रहता है तब हम 2 रुपया दे सकते हैं है ना अगर कुछ भी नहीं मिलने का संभावना नहीं है तो क्या करेंगे और 2 रुपया को भी हम अगल के रखेंगे तो भौतिक जगत में जो भोग का जो स्पृहा वो त्याग करना बहुत कठिन है सत्ययुग आदि युग में संभव होता था क्योंकि उनका मनोभाव बहुत ही प्रबल था उनका इच्छा शक्ति धी शक्ति बहुत ही प्रबल थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सद्गुरु के निर्देश के अनुसार वे करते थे अपनी इच्छा के अनुसार और कलियुग के लिए संभव नहीं है कलियुग के मनुष्यों में बहुत दुर्बल है इसलिए कलियुग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है इसलिए कलियुग में महाप्रभु ने आकर ये कृष्ण भक्ति प्रदान की और फिर कृष्ण भक्ति संकीर्तन के माध्यम इसका प्रचार हुआ संकीर्तन के माध्यम मतलब सब कुछ देके भगवान को महिमा कीर्तन करना और इसमें कितना आनंद मिलता है तो ये आनंद के पास बाकी सब कुछ निरानंद बन जाता है तो इसलिए उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है
সেগুলো মহাপ্রভু তো বৈদিক বসন ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়েছিল কিন্তু তারপরে উনি যে 6 জন প্রধান শিষ্য মানে সবাই বৈষ্ণবার তারা সকলে সাদা বস্ত্র তারপর থেকে বৈদিক বসন ধারণটা ছিল না তারপরে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর থেকে আমরা দেখছি আবার সন্ন্যাসের এটা ধারাটা চালু হয়েছে তাহলে মাঝখানের যারা ছিলেন গুরু পরম্পরা তারা কি তাহলে সন্ন্যাসী নন
गुड क्वेश्चन सब समझे हैं प्रश्न क्या था हिंदी में बताओगे उनका कहना था और इनका प्रश्न था कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद संन्यास लिए थे पर उनका जो शिष्य था प्रधान 6 शिष्य उन्होंने सन्यास का भगवा कपड़ा नहीं पहने थे ग्रहण किए थे उन्होंने सादा कपड़ा पहनते थे। और महाप्रभु के धारा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही सन्यास आश्रम का प्रचलन किए थे, त्रिदंड सन्यास का। तो उनका कहना था, पूछना था कि उनके बीच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले जो सन्यासी थे, मतलब कोई क्या सन्यासी नहीं थे? प्रश्न का उत्तर है हाँ, उन सब सन्यासी थे। सन्यास का चार स्तर होता है, वो है कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक और परमहंस। ये कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक और अंत में श्रेष्ठ स्तर जो है सन्यास का, वो है परमहंस। परमहंस स्तर का मतलब होता है इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में चले गए। उनका स्थिति भौतिक जगत में नहीं। तो महाप्रभु के अनुयायी जो थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब परमहंस थे। इसलिए उन्होंने सादा कपड़ा, उनका वेश था सफेद। पर कुछ दिन बाद उनके अनुकरण करके जो भौतिक जगत का आसक्ति से जो मुक्त नहीं हुआ है, जो भौतिक जगत में भोग करने के लिए गिरे हुए हैं, उन सब उनका वेश का अनुकरण कर रहा था। साधक जो परमहंस का जो वेश है उसको ग्रहण करके, जिसको बाबा जी कहता है वृंदावन, तो उनको जो ये गलत फहमी, उसको सुधारने के लिए और उसको समझाने के लिए और बाकी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस सन्यास का ग्रहण किया। उनका मनोभाव था कि ये जो वेश है ये हमारे परम गुरु का वेश है। उनका गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने भी विवेकानंदी थे। विवेकानंदी मतलब पूर्ण परमहंस के स्तर में थे। पर आलतू फालतू आदमी जो भौतिक जगत का बंधन से जो मुक्त नहीं हुआ, शास्त्र ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो गोस्वामी का भेख पहनकर उनका अनुकरण कर रहा था। इसको इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये किया था कि संकल्प किया था कि मैं वर्णाश्रम का जो सन्यास है उस सन्यास ग्रहण करके मेरा गुरुदेव का पैर कमल, चरण कमल मेरा सर पे धारण करके बाकी सब जो नकली जो है उसको हम दुनिया के सामने उसका एक्सपोज कर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास ग्रहण किए और हमारे संप्रदाय में सन्यास आश्रम का प्रचलन किया। अपसिद्धांत धांत हारे, ये जो हैं सब रूप गोस्वामी के अनुकरण करने वाला और सारे अपसिद्धांत का जो प्रचार किए हैं उसको ध्वंस करने के लिए, सिद्धांत धांत हारी। उन्होंने अपना गुरुदेव श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के तस्वीर से सन्यास लिए। Okay, thank you very much. Hare Krishna. I have to Vandana, you are meeting people. Can you back?